बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम है मेरे माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी कहीं अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। सर्वप्रथम एक निवेदन है आप सबसे, सितंबर अक्टूबर में खुले सत्संग हो रहे हैं, एक गुरदासपुर में, एक जम्मू में। उन सत्संगों में जो साधक वहाँ सम्मिलित होना चाहते हैं, मेहरबानी करके यहाँ नाम दें। जिनके नाम स्वीकार हों वही वहाँ पहुँचें। वैसे आप नाम भेजेंगे तो स्वीकार नहीं हो पाएंगे। यहाँ नाम जमा करवाइएगा, दीजिएगा। जिनको स्वीकृति मिले मेहरबानी करके वही उन खुले सत्संगों में जाइएगा। धन्यवाद। चर्चा चल रही थी साधकों गीता जी के नौवें अध्याय की। नौवें अध्याय के 30वें एवं 31वें श्लोक की। 30वां श्लोक क्या कहता है, कितनी सांत्वना है, कितना आश्वासन है गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण की ओर से। कोई अति दुराचारी भी एक भाव से यदि आराधन करता है, भजन करता है, तो वे साधु ही जानने योग्य है। क्यों? एक तो कहा एक भाव से, मानो अनन्य भाव से, विद अनडिवाइडेड हार्ट, एक भाव से, अनन्य भाव से जो मेरी आराधना करता है, जो उपासना करता है, वह साधु ही जानने योग्य है। कौन? अति दुराचारी भी या क्यों ना हो। कोई अति दुराचारी, बड़ा दुराचारी स्वामी जी महाराज ने लिखा है, अति दुराचारी भी कोई क्यों ना हो, यदि वह एक भाव से मेरा भजन करने लग जाता है तो वह साधु ही जानने योग्य है। क्यों? वह यथार्थ दृढ़ निश्चयी हो गया है। किस चीज के प्रति? दृढ़ निश्चयी यथार्थता के प्रति। ये यथार्थता क्या है? भगवान श्री एक तो कहते हैं उस दृढ़ निश्चयी ने ये निश्चय कर लिया है कि आज के बाद मेरा जीवन दुराचारी जीवन नहीं होगा, उसने दुराचरण का त्याग कर दिया है। इतिहास यही कहता है जो गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है। यदि किसी वैश्य ने, यदि किसी डाकू चोर ने भक्ति में जीवन को अपनाया है तो साथ साथ चोरी डाका या व्यसनी जीवन नहीं रखा, व्यभिचारी जीवन नहीं रखा, उनका त्याग किया है, उसके साथ उसके बाद भक्ति में जीवन अपनाया है तो वह साधु ही जानने योग्य है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। मानो वह साधु नहीं है लेकिन उसको साधु बनाने का जिम्मा मेरा है, मैं उसे साधु बना देता हूं। क्यों? वह दृढ़ निश्चयी है, उसने ये फैसला कर लिया है कि मैं अब दुराचारी जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, एवं उसके साथ ही साथ ये दृढ़ निश्चय भी कर लिया है राम भजन के अतिरिक्त परमात्मा के भजन से कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। दोनों बातें साथ, सदाचारी जीवन एवं भक्ति में जीवन दोनों हों तो परमात्मा के दर्शन हुआ करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हुआ करती है, परम शांति आपको लाभ होती है, इनके बिना नहीं। ये दोनों श्लोकों में जो कहा गया है वह आपकी सेवा में रखा गया है। उस रविवार आपने सुधनवा का दृष्टांत सुना था। खत्म कहां हुआ था? सुधनवा बहुत दुराचारी व्यक्ति है, अपने दुराचरण के कारण बहुत उदास, निराश, हताश है। एक सिलसिला कब तक चल सकता है? आदमी थक जाता है, निराश हो जाता है, बहुत देर तक इंद्रियां साथ नहीं देती, शिथिल हो जाती है, एक लेकिन तृष्णा तो वैसी की वैसी जवान रहती है, ये कैसे मरेगी? जब तृष्णा का दुख मुड़ जाएगा तो, और तृष्णा का दुख मुड़ता है सत्संग के माध्यम से। सत्संग हमारी वासना का दुख बदल देती है, उसे वासना से हटा के तो उसे सद्वासना की ओर मुड़ देती है तो कम बन जाता है। मोह ममता के जाल से छुड़ा के तो उसकी मोह ममता को परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। सत्संग सत्संग का प्रताप है। सुधन्वा आज घर छोड़ के निकल गया था, कहां गया है? नर्मदा नदी के किनारे, वहां बहुत संत महात्मा अनंत मग्न बैठे हुए हैं। कोई ध्यान में बैठा हुआ है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है। ये सब कुछ देख के उसे जो गलानी होती है आप उसका अनुमान नहीं कर सकते। रो रहा है, बिलख रहा है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो इनके पास कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी न इन्हें खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न सोने की चिंता, उसके बाद भी कितने आनंदित हैं, कितने प्रफुल्लित हैं, कितने मुदित हैं ये लोग। रोज इनको दिखता रहता है, कभी पास नहीं बैठने की हिम्मत की, कभी बात करने की उनसे हिम्मत नहीं की। इस प्रकार एक महीना लगभग व्यतीत हो गया है, सिर्फ संतों महात्माओं के दर्शन किए हैं, भजन पाठ करते हुए उनके दर्शन किए हैं। वृथा तो नहीं जा सकते। अतएव सर्प के काटने से सुधन्वा की मृत्यु हो गई है। संतों महात्माओं को अच्छा नहीं लगा, हमारे पास मृत्यु का हो जाना अच्छी बात नहीं लगी। कैसे हिम्मत हुई मृत्यु की, कैसे हिम्मत हुई काल की? भीतर ही भीतर संत महात्मा इस बात को सोचते हैं, पर जाना तो होता ही है। चाहे आप श्रमशन में बैठे हुए हो, चाहे आप कहीं, मृत्यु का बोलावा तो कहीं भी आ जाएगा। संत के सत्संग में बैठे हो या कहीं और बैठे हुए हो, मृत्यु को इन बातों से क्या लेना? संकोच तो होता है उसे, लेकिन फिर बड़ी सरकार का हुक्म है, हुक्म तो उसी का मानना पड़ता है। सुधन्वा को उसके कर्मों के अनुसार यमराज के सामने पेश किया गया है। यमदूत उसका सारे का सारा हिस्सा अपना चिट्ठा यमराज को सुनाते हैं। यमराज तत्काल हुक्म देते हैं इसे घोर से घोर नरक की यातनाएं दी जाए। तपती हुई बालू में, रेत में इसे घसीटते हुए जितनी दूर तक घसीटते जाओ, आपको आगे उबलते हुए तेल का एक कड़ाहा मिलेगा, उसमें इसको फ्राई करने के लिए डाल देना। ऐसा ही हुआ, लेकिन परमेश्वर की लीला देखिएगा। तेल उबलता हुआ तेल बिल्कुल शीतल हो गया है। नरक में, यमपुरी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सब अचंभित है। यमराज ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अतएव बहुत अचंभित, बहुत चकित, ये सब कुछ कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं देवी सज्जनों, उसी वक्त देवऋषि नारद का आगमन होता है। याद किया, आवाहन किया, आगमन होता है। वे समझाते हैं यमराज को, देवऋषि नारद समझाते हैं। कहते हैं, यमराज जी, ये नरक की यातनाओं के काबिल का पात्र नहीं है। इसने एक महीने तक संतों महात्माओं को भक्ति करते हुए उनके दर्शन किए हैं। निकालिएगा इसको यहां से, बस इसका यहां से गुजरना ही इसकी सजा थी। ये यक्ष योनि का पात्र बन गया हुआ है, इसे यक्ष योनि दीजिएगा, इसे ऊपर भेजिएगा, ऊपर के लोगों में जाने योग्य हो गया हुआ है। ऐसा ही हुआ। अब जिसे संत महात्मा इस प्रकार की अर्ज करते हैं, सुधन्वा ने मात्र संतों महात्माओं के श्रद्धापूर्वक, प्रायश्चित पूर्वक, पश्चाताप पूर्वक दर्शन किए हैं। मन में गलाने, अपने पाप की, मैं घोर पापी, ये कितने पुण्य आत्मा है, मानो ये उसे अंतर दिखाई दे रहा है अपने में और उनमें। अतएव आंखें झलक रही है अपने पापों पर, अपने पाप कर्मों पर। परमेश्वर ने उसके अनेक पाप धोके बहा दिए, अनेक पापों को धो दिया। वह सुधनवा सुधनवा नहीं रहा हुआ। काश उसने थोड़ी देर और जिया हुआ होता वह, तो वह मोक्ष का अधिकारी हो गया होता। उसे सत्संगति मिली हुई होती तो वह मोक्ष का अधिकारी हो गया होता। कुछ भजन पाठ उसने किया हुआ होता तो वह मोक्ष का अधिकारी हो गया होता। संत महात्मा समझाते हैं, सदर्शनों उसने तो कुछ नहीं किया। कहते हैं, आप तो बहुत भाग्यवान हो, आप तो परमेश्वर श्री राम का नाम जपते हो, आप सत्संग में जाते हो, भजन कीर्तन करते हो, ध्यान में बैठते हो। यदि परमात्मा आपके जन्म मरण के चक्र को काट के आपको मुक्ति देते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी आश्चर्य की बात है। चर्चा यहाँ समाप्त हुई। आज आगे बढ़ते हैं, अगले रविवार को ये चर्चा और आगे जारी रखेंगे। जो संत महात्माओं ने कहा है, क्या ये सत्य है? उनकी वाणी गलत तो नहीं हो सकती, लेकिन हम तो प्रमाण चाहते हैं, हम ये चीजें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वाकई किसी के साथ ऐसे घटित हुआ है। जो संतों महात्माओं ने कहा है, अपने अनुभव के अनुसार कहा है, क्या प्रमाण है इसका? एक दृष्टांत के माध्यम से देखिएगा। भद्रतनु नामक एक ब्राह्मण है, जाति का ब्राह्मण है। बाल अवस्था में माता पिता की देहांत हो गया, उनके उनका छाया सिर से उठ गया, जवान हो गया है। सत्संग का अभाव, संयमी जीवन का अभाव, मार्गदर्शक को जीवन में नहीं मिला, जीवन विषयी हो गया, जीवन बर्बादी की तरफ मुड़ गया। सन्मार्ग की तरफ जाने के बजाय कुमार्ग अपना लिया। कोई ऐसा पाप नहीं जो सुधनवा ने नहीं किया, जीवन व्यसनी हो गया। पर स्त्री की चाह, पर धन की चाह, जुआ, शराब, सारे के सारे दुर्गुण जितने आप सोच सकते हो, वे सारे के सारे भद्रतनु के अंदर। नगर के बाहर थोड़ी ही दूर एक वैश्य रहती है, बहुत सुंदर। उसके प्रति भद्रतनु असक्त हो गए, नित्य आना जाना हो गया। वे वैश्य दिल की बहुत अच्छी है, वह किस मजबूरी में ये सब कुछ कर रही होगी परमात्मा जानता है। अतएव स्वयं जो कुकर्म करती है उस पर भी पश्चाताप करती है, और जो भद्रतनु करता है उस पर उसे ज्यादा गलानी है। ये मेरे पास क्यों आता है, उसे समझाती है, मेरे पास आना पाप है, इतना नहीं है, इससे तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, यहां का जीवन भी और जहां जाना है वहां का जीवन भी तेरा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ये नरक की यातनाएं, घोर से घोर यातनाएं तुझे मिलेंगी। लेकिन इसकी समझ में, युवक की समझ में कुछ नहीं आता। आज पिता का श्राद्ध है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा वाला हृदय नहीं है, हृदय और मन तो वहां बैठा हुआ है उस वैश्य के पास। अतएव एक मजबूरी से जो कुछ किया जाता है, छुटपुट कर्म किया और भागा उस वैश्य के पास। लानत है तेरे ऊपर, आज वैश्य को इस बात का पता था कि आज पिता का श्राद्ध है। शी वॉज वेरी श्योर कि आज ये ब्राह्मण युवक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, इसका आज तक कोई कर्म ब्राह्मण का नहीं है, सिर्फ जाति का ब्राह्मण है, आकृति से मानव है, अमानवीय कर्म है इसके, कोई कर्म मानव वाला कर्म नहीं है इसका, क्रूर है, हर तरह से क्रूर है। उसे पक्की आशा थी आज ये नहीं आएगा, इसके पिता का श्राद्ध है, आखिर ब्राह्मण की संतान है। लेकिन वह शराब के प्रति श्रद्धा नहीं है, पिता के प्रति प्यार नहीं है, दोनों चीजें वहां टिके हुए हैं। अतएव छोटा मोटा जो कुछ भी करना था वह कर करा के श्राप नहीं, बस वैसे ही कुछ किया और चला गया है वैश्या के पास। आज वैश्या ने बहुत लड़ाड़ा है, निर्लज्ज कहीं का, तुझे इस शरीर में क्या दिखाई देता है? तो मुझे बता, इस शरीर में हड्डी मांस रक्त विष्ठा के अतिरिक्त कुछ और है? बच्चा इत्यादि के अतिरिक्त कुछ और है क्या तुम्हें दिखाई देता है जिसके प्रति तुम इतनी बुरी तरह से आकर्षित हो? काश इतना ही आकर्षण यदि तुझे परमात्मा में हो गया हुआ होता तो वह तेरा जीवन बदल के रख देते, वह तुम्हें इंसान बना देते, तुम्हें भक्त बना देते और तेरा लोक परलोक दोनों सुधर गए होते। लानत है तेरे ऊपर, तेरा पिता आज क्या सोचता होता? यही सोच रहा होगा तेरे जैसा नलायक पुत्र मेरे घर में पैदा ही ना होता तो अच्छा था, तेरे जैसे नलायक पुत्र के बिना यदि मैं होता पुत्रहीन होता तो मैं आज अच्छा होता, कम से कम ऐसा तो ना होता कि मैं तेरे कारण नरक की यातना या पितृलोक में तड़प रहा हूं। पुत्र ने कुछ नहीं किया, अपने पिता के लिए कुछ नहीं किया, आज बहुत गहरा धक्का लगा है, आज बड़ी गहरी चोट लगी है भद्र तनु को। अतएव जीवन की दिशा बदल गई। आज भद्र तनु ये शब्द नहीं थे, बड़ा गहरा घाव इन शब्दों ने किया है। मैंने ब्राह्मण होके अब्राह्मण जैसे कर्म किए, मानव होके अमानव जैसे कर्म मैंने किए हैं, लानत है मेरे जीवन पर। मुड़के उस घर की ओर कभी नहीं देखा, वहां से रोता हुआ निकला है। माताओं कहते हैं वैश्या तो पहले ही तैयार बैठी थी, कब से मेरा पीछा छोड़े और कब मैं अपना जीवन भक्ति में जीवन बनाऊं। उसने उधर अपने जीवन को बदल लिया और भद्रतनु इधर अपने जीवन को बदलने की तैयारी में है। समय हो गया है भक्तजनों, अगले रविवार को करेंगे आगे की चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।